किसी हद तक वास्ता मस्जिद से पड़ता है।
दिल में खौफे खुदा सही मानों में उजागर हो जाए ना, क्या वक्फ क्या गैर वक्फ, हर जगह मतलब शरीयत पर अमल करने की तरकीब रखेगा। वक्फ में तो हम इसराफ ना करें और घर में इसराफ करें। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसी को दरवाजा जोर से बजाने और बंद करने और नहीं देती थी, सरकार को तकलीफ होगी। मेरे आका का एहतराम नहीं होगा तो मेरे तेरे बाप का होगा एहतराम क्या?
अपा जिस तरफ आप फरमा रहे हैं, अभी जैसे मौजू आपने लिया, अब एक मुराकिब हैं, अब मतलब एक इस्लामी भाई है जो नहीं काम कर रहे, अब उसको थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ता है कि यार क्या, तो उसको खराब लग जाता है। अब खराब उसको लग रहा है, काम वो खराब कर रहा है, उसको समझाओ तो खराब भी उसको लग रहा है। तो ऐसी सूरत में अब जैसे आप सफाई के बारे में फरमा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम है या जो खादिम है इनका काम सफाई करना है, सही सफाई करना, और वो रस्म सफाई नहीं है
जो मैंने देखी, वो रस्म सफाई मुराकिब की भी तरबियत नहीं होती है सर। छोटे छोटे दीवारों पर काला काला होता, मैं ध्यान दे चुका हूँ कि ये सफाई इस तरह नहीं होती, ये साइडें मतलब जो काली हो जाती है ये यूं होती है, ये यूं यूं करते हैं ना, ये सारा मेल सिमट सिमट कर दीवार पे, अब ये उखड़ेगा नहीं। अब इसको उखड़ने के लिए भी टेक्निक चाहिए, तो तेजाब और क्या क्या डालना पड़ेगा, जब जाकर ये साफ होगा। अपने घरों में कोई इस तरह नहीं करता, ये है कि यूं यूं करके भी यूं यूं भी करना पड़ता है, ये कौन करवाए? तो मुराकिब की भी तरबियत नहीं होती है सर कि यूं यूं भी करे ताकि ये मेल जो साइडों पर इकट्ठा हो ये भी धुलता चला जाए। इनको तेजाब या जो भी इसकी जो है ना तरकीब, तो साफ करना पड़ेगा। ये अल्लाह का घर है, इसमें एक मामूली सी दाग भी नहीं होना चाहिए, ये रमजान शरीफ से पहले पहले हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये मुस्तकिल ये तरकीबें देनी है, ये भी करना है। कोई भी मेल कुचेल वाला पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो, इकट्ठा होगा ये जमेगा फिर ये नहीं उतरता। अब इसको आप नॉर्मल पानी से उतारोगे ये नहीं उतरेगा, अब इसके लिए टेक्निक करनी पड़ेगी, शायद तेजाब या जो भी मालूमात करके। मगर मस्जिद के अंदर बदबू नहीं होनी चाहिए, ये भी वाजिब है, मस्जिद को बदबू से बचाना वाजिब है। अच्छा हुआ याद आ गया, तेजाब में बदबू होती है, ऐसी बदबू होती है आदमी खड़ा नहीं रह सकता। ये किसी से मशवरा करके ही करें।
ऐसे लिक्विड आते हैं पापा जिनसे ये सफाइयां हो जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा ये वजाहत, मेरा मशवरा है कि अगर हो जाए कि मजलिस को ऐसे इस्लामी भाई नहीं मिल पा रहे कि जो इस तरह की कर लें। अब वो मतलब पापा सीजन हो, जैसा भी माह रमादान एक बेहतरीन एक मौका होता है कि इसमें इतने इस्लामी भाई आ जाते हैं, तो इसमें फिर थोड़ा सा एक मिजाज बन जाता है कि चलाना तो पड़ेगा, इसको हटा देंगे काम कैसे होगा, बातें बहुत बन जाती हैं बेचारे के बारे में, गीबतों के दरवाजे खुलते होंगे और उसमें दुश्मनियां हो जाने का खतरा होता है, दिल आजारियां हो जाने का खतरा होता है, तो इसका भी कुछ बेचारों को हल देना कि ये कैसे अपने आप को बचाएं।
अब इसमें दो खतरे हैं, देखो एक दुनिया का खतरा, एक आखिरत का खतरा है। अब जिस पे हाथ रखे, या दुनिया का खतरा कबूल करे या आखिरत का खतरा कबूल करे, तो अक्लमंद को क्या करना चाहिए ये सब समझते होंगे। आखिरत का खतरा मोल ना लिया जाए, आज नाराज होता हो तो कल नाराज हो, हक बात करे, अपनी गलती ना हो। हाँ अगर झाड़ा डांटा ऐसे अल्फाज बोले जो उसके दिल को बुरे लग गए, बदतमीज मानता नहीं है गधा कहेगा, 100 बार तेरे को समझा है। ये मैंने अभी तो आहिस्ता बोला ना, तब भी चुभे होंगे, और जोर से बोलूं तो हर पार हो जाएंगे। मैंने किसी फर्द को बोला होता तो चुपता मैं, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। अभी तो क्या क्या एक दूसरे को बोलते होंगे बाजू का दिए, तो पीछे से कुछ और बोलते होंगे, हराम का खाता है, हराम का ड्यूटी पूरी देता नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं, हराम खोर है पक्का हराम खोर, यूं करके वो गीबतें भी करते होंगे। बाहर आ लिए कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई, अगर वाकई जो मुराकिब है तो उसकी तो है, उसकी तनख्वाह यही है, इसी की तनख्वाह है कि ये इनकी निगरानी करे। अब अगर इसमें खयानत करेगा, चाहे मुरव्वत में करे, चाहे रियायत इनके साथ दोस्ती में करे, चाहे डर के करे इनसे, सही खबर तो देनी पड़ेगी। डरता है अगर तो फिर ये खुदा छोड़ दे, हर एक नहीं कर सकता, अपनी जान छुड़ा ले, क्यों आखिर दांव पे लगाइए भाई। इसलिए मतलब ये के, और फिर ये के, ये वाजिब है उस पर, और जो भी सही काम नहीं करता, शरीयत की हुदूद तोड़ता है, ऐसों को तो शरअन माजूल कर देना वाजिब है, वरना जो माजूल नहीं करते हैं उसको नौकरी से फारिग नहीं करते, वो गुनाहगार है।
बल्कि पापा माजूल कर देना जिस पर वाजिब था ना, अब अगर वो माजूल नहीं कर रहा और बिला इजाजत शरई उसको रियायत दे रहा है, तो उस माजूल जिसको करना वाजिब था ना, अब उसको माजूल करना भी वाजिब हो जाएगा।
जिसको पता है,
जिसको पता है, अब उसके ऊपर वाले को उस पर वाजिब हो गया कि अब इसको भी फारिग कर दे, क्योंकि ये बिला इजाजत शरई ये सरफे नजर कर रहा है। तो अब ऐसी चीजों के बारे में अमीर सुन्नत के माशाल्लाह जो अभी मदनी पुल मिले हैं, ये बात दुरुस्त है कि हर एक मुराकिब बन नहीं सकता, हर एक सुपरवाइजर बन नहीं सकता, हर एक निगरान बन नहीं सकता, क्योंकि निगरान का निगरानी करना जो है ना, ये काम है, और उसका हर बात बोलना, बाबा हर बात बोलना तो उसको बुरा तो लगेगा ना, उसकी जब काम का कहेंगे तो हर बुरा लगने की जिम्मेदारी क्या उसके मुराकिब पर होगी?
मुराकिब का अंदाज वाजिबी होना चाहिए, जो मतलब शरीयत के दायरे में उसकी तरकीब करे, चाहे उसको गलत बोलेंगे, चाहे बुछ बुछ करके गलत बोलेंगे कि तूने गलत किया, तो उसको बुरा तो लगेगा। अब ये तो ताज़ी है, ये ईजा देना नहीं, उसने ईजा ओढ़ ली, अब झाड़ के बोलेगा तो झाड़ने की तो हमारी इजाजत है ही नहीं, झाड़ने से तो माहौल खराब ही होना है। जो जितने आपको दिए गए इख्तियार उसको बरूए कार लेते लाते हुए की तरकीब करें, फिर अगर वो नहीं मानता जो आपको उसूल देंगे उसके मुताबिक आखिरकार उसको जाहिर छुट्टी देनी होगी।
बापा सीजन हो, जैसे माह रमादान एक बेहतरीन एक मौका होता है कि इसमें इतने इस्लामी भाई आ जाते हैं, तो ये खाने पीने के हवाले से जब खाना मिल गया है तो इसकी किस तरह वो एहतियात करे, किस तरह उसकी हिफाजत करे?
मुझे तो यहाँ तक मालूम आते हैं कि बाज इस्लामी भाई जो यही अपने जो इजारे के जो अपने होते हैं, वो पूरे पूरे थाल जो है ना, ये अपने लिए छुपा लेते, रख देते हैं कहीं महफूज जगह पर, फिर बाद औकात ये भूल भी जाते हैं और फिर ये खाना जो है ये नाराज हो जाते हैं, जिसको आमतौर पर बोलते हैं कि वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ये भी शिकायत है। अच्छा, फिर जैसे दो मुलाजिमीन की दोस्ती है तो एक थाल तरकीब से सरका लिया, फिर ये मिलकर खाए, आधा खाया आधा वहीं सड़ रहा है, अब ये समझते हैं कि हमने छुपा लिया, तरकीब बना ली, कोई नहीं देख रहा, मगर ए गुनाह करने वाले खबरदार, अल्लाह देख रहा है। ये हमारे आलमी मदनी मरकज की इस तरह की भी शिकायत हैं। अब चूंकि यहाँ 25 के आसपास मजलिस है, किसी मजलिस को मुझे पता है कौन सी मजलिस ऐसा करती है, जो मुझे शिकायत है, मेरी अपनी जाती तहकीक कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं किसी मजलिस की निशानदेही नहीं करता। अब ये जो भी ऐसा करता है वो गौर कर लेगे वो क्या कर रहा है, ये अपनी आखिरत, ये कौम का चंदा, कौम का तिया, एक एक दाने का वैसे कयामत के दिन हिसाब है, यानी एक एक जर्रे का दाने में तो हजार जर्रे हो जाएंगे यार, इतना बड़ा होता है दाना, जर्रे की जर्रा क्या होता है, जर्रे की तो मुख्तलिफ तारीफात है, जिसमें एक तारीफ ये भी है कि जैसे कि वो आपने धूप में शेड देखा होगा, शेड धूप में एक शेड बनता है ना, उसमें बारीक बारीक जर्रे उड़ रहे होते हैं, अगर वो धूप ना हो तो नजर नहीं आएंगे, आप यू टार्च मारो तो वो शेड बन जाएगा, कार की लाइट में शेड बनेगा, तो इनमें जो जर्रात हैं जो बगैर ये रोशनी के नजर नहीं आते, तो ये एक जर्रा इनमें का, इससे मुराद ये जर्रा ये ऐसा भाई, तो कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब है, तो पूरे पूरे थाले में तो करोड़ों जर्रे इनवानों कर हो जाएंगे। तो ये हो रहा है, क्या किया जाए? फिर ये कि हमारे कई ऐसे मस्जिद के मजालिस के जो मुलाजिमीन होते हैं इजारे पर जो होते हैं साईं भाई, खुसूसन रमजानुल मुबारक की इत्तिला है मुझे कि वो दोनों टाइम यहीं खाते हैं। एक तादाद है जो मतलब यहीं खाते हैं, खाने के लिए आते हैं चले जाते हैं, मतलब इनका ताल्लुक ना एहतिकाफ से है न एहतिकाफ मोतकेबिन की खिदमत से है, सिर्फ यह कि ये स्टाफ में यहाँ हमले में होते हैं, ये खाते हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं है, ये सोचते नहीं है कि यार मतलब मदनी चैनल से इलियास हमारे लिए खैरात कर रहा है, भीख मांग रहा है कि आशिकान रसूल को खिलाओ, ये मुल्क में से कोने कोने से आए हुए हैं, दुनिया भर से आए हुए हैं, एहतिकाफ में बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, इनके लिए हमको लंगर रजिया दो। तो ये आपको शर्म नहीं आता, उल्टी नहीं हो जाती आपको यार कि इन नेक बंदों के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो दूर दूर से यार हम खा जाते हैं, वो पूरे पूरे थाल में छुपा लेते हैं, जो सड़ जाते हैं दूसरे दिन, सड़ा हुआ बदबूदार मिल रहा है, ये कर रहे हैं यार। ये जो बैठे ना, ये मैं इन्हीं को समझा रहा हूँ, वो इन्हीं में से शिकायत है मुझे कि हमारे अमले में से जो ये मजलिस है कि मुझे तो ये कि सब खाते हैं आगे, तो घर नहीं जाता, ये रमजान शरीफ में इनको मौज लगी होती है। तो खैर सब नहीं खाते होंगे, ऐसा नामुमकिन है, लेकिन जो भी खाता है वो सोच लेगा यार आखिर मुरुव्वत भी तो कोई चीज है ना, कोई मतलब है जमीर भी तो कोई चीज है, अगर अपना एहतिकाफ से लेना देना क्या है, अपना खाली खाने के लिए आना और चले जाना, ना मदनी मुजाकरे में बैठना है, ना जो हल्के दुआओं के लगे हुए उनमें हमें बैठना है, बल्कि जमात से नमाज की किस किस को तौफीक मिलती है ये देख लें, कभी जिंदगी में पहली सफ देखिए कैसी होती है, खाली खाना ही आता है हमको, हमारी बदनसीब नहीं, महरूमी नहीं है। अब मैं किस किस बात का तस्करा करूं, ये सब सोचे इसमें। मैं ये नहीं कहता कि ये खाना जो खाया वो हराम है, लेकिन अब आप सोचें कि यार ये मुरुव्वत के खिलाफ नहीं है क्या? आपके लिए मैं जो मांग रहा हूं तो आप लोगों के लिए तो नहीं मांग रहा था, मुतकिफिन के लिए मांग रहा हूं, जो दूर दूर से मदनी मुजाकरों के लिए आते हैं बाजों का, तो हम उनको खुद खिलाते हैं हफ्ते को, हमारे यहाँ हम ज्यादातर उनको खिलाते हैं जिन्होंने दरस निजामी किया हुआ है, मदनी है, उलमा है, जब कोई मशरिक में रहता है कोई मगरिब में रहता है तो इनको हम मतलब अट्रैक्शन देते हैं कि चलो यार तुम्हारा घर से खा कर आओगे तो पहुंचोगे नहीं, सुस्ती हो जाएगी, जो कुछ हो यहाँ से ड्यूटी है घर जाओगे वापस कैसे आओगे, होटल में खाओगे तो यार होटल में तो महंगा पड़ता है ना, घर में जो खाना 50 रुपए में पेट भर जाएगा वो 200 रुपए होटल में कैसे देंगे, वो हंडिया इकट्ठी पकती है तो वो हो जाता है। हम लोग मफाद परस्त है, सीधी बात है, इस बहाने मदनी मुजाकरे में रहेंगे और आखिरत की भलाइयां इकट्ठी होंगी, और क्या और मकसद क्या है? अच्छा ये मफाद भी क्या मेरा जाती मफाद है? मैं तो उलमा को तो बहुत जोर देता हूँ, हमारे जो दरस निजामी किए हुए हैं मदनी, और पक्के हों और पक्के हों और इनकी मालूमात हो, यही मस्जिद ने संभाल भी रहे, मस्जिद इन्होंने संभालनी है, जामियात इन्होंने संभालने, उम्मत की रहनुमाई इन्होंने करनी है, तो जितने आएंगे, अब मैं अगरचे आलिम नहीं हूँ लेकिन मैं तजर्बाकार आदमी हूँ, मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह यानी इन कामों में एक उम्र का तवील हिस्सा मेरा गुजर गया, मुझे अपने तजर्बात में मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ये तजर्बात आप लोगों के जहनों में मुंतकिल करूँ, कल जाकर इंशाल्लाह इसका आपकी आखिरत को भला फायदा ही होगा, बल्कि दुनिया में भी फायदा होगा इंशाल्लाह। तो अब ये इस वजह से हम खिलाते हैं, अब जैसे इनकी हमने दावत की कि चलो भाई इलमिया के आ जाएं, जामियतुल मदीना के मुदर्रिसीन आ जाएं, ऑनलाइन के कारी साहिबान आ जाएं, इस तरह के कारी साहिबान हमारे मदरसतुल मदीना वालों को भी हम तरकीब करते हैं, तो ये आ जाए। अब इनमें ये भी आता है, ये भी घुस जाता है, वो भी घुस जाता है, यूं आकर भी कुछ तुफेली आके बैठ जाते, तो इनको इस हफ्ते के मदनी मुजाकरे में शामिल, मैंने सबको शर्मिंदा किया था, लेकिन तुम्हारे लिए बापा थोड़ी भीख मांगता है मदनी चैनल पर, ये तो जो भी हम जमा करते हैं वो मदनी मुजाकरों के लिए और एक दीन का काम हो रहा है, इसके लिए लंगर रज़िया क्या करते हैं अतिया, आप हु आ रही हो, आप क्यों खाते हैं, आप रोज क्या भीख मांग कर खाते हैं, आपका क्या था? यानी ये खाकर ये निकल गए, वो खाकर ए यूं सरक गए, मदीन मुजाकरे में नहीं बैठना, तो आपके लिए थोड़ी ये देगे चढ़ती है यार। दीन का काम हो रहा है, आपको सोचना चाहिए, सबको सोचना है, चैनल वालों को भी सोचना चाहिए कि यार क्या अपने को तनख्वाह नहीं मिलती हम यार यहाँ इन लोगों का जो उलमा का या जो इन लोगों का खाना मेहमानों का पक्का हम यार ठा करके बैठ जाए। यार खुददारी भी तो कोई चीज है ना, आदमी अपने अंदर खुददारी पैदा करे, कनाअत पैदा करे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे तो हदीस पाक का वो मदनी फूल, हर मदनी फूल हदीस पाक का तो जन्नती फूल है। तो जैसे हदीस पाक में ये मजमून है कि जो कुछ दूसरे के पास है उससे मायूस हो जाओ, खलास, जो कुछ दूसरे के पास है उससे मायूस हो जाओ। समझे कि ये भले रात दिन हम पर खर्च कर रहा है, एक बात है ना, मायूस हो जाओ और कब इसकी घूम जाए ना, अल्लाह हमको देता रहे। आदमी मतलब रहने के बस बच कर रहे। मुझे एक इस्ताई भाई का पता चला, अपने इस्ताई भाई ऐसे भी हैं माशाल्लाह के, वो मदीने शरीफ गए थे उम्रे पर। अब वो जैसे के पैसे उसके पास खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब वो खानदान के भी बाद अफराद साथ थे, एक दूसरे पर कह चलो इसके पास होंगे, उसके इनके पास, सबके पास एक दूसरे के आश्रय पर खत्म हो गए। एक दिन ये भूखे रहे, बताया नहीं दूसरों को, ये अपने जो काफले है अपने ही साई भाइयों की बात है, इमामे वाले की बात है, तो ये बताया नहीं किसी को उसने, और साथियों को नहीं बताया। एक दिन फाका किया, फिर वो हुआ यूं कि इसने जिस इतना मैंने मुझे बताया उसने बताया कि बोला कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह 1500 रियाल चाहिए, 1500 रियाल चाहिए। खत्म हो गया खाना पीना भी, तो ये फिर बोला आ गया मैं, तो घर पे गया और कुछ घंटों के बाद ये हुआ कि कोई दोस्त आ गया, उसका जान पहचान थी उस दोस्त से, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब यूं यूं कर दे। उसने 500 रियाल इसको दिए, अब इसने मांगे थे बारगाह रिसालत से 1500, इसने दिए 500। अच्छा, उसने 500 बोला यार गिफ्ट, कि जो गया ना वो एक तरह की कोई शख्सियत था जिसके साथ ये वाकया पेश आया कि लोग बाज़ोकात ऐसों को तहाइफ देते। 500 दिए, फिर उसको क्या सूझी, फिर जेब में क्या 500 ले लो ना, अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ था ना, तो फिर उसने जेब में हाथ लगाया, यार ये भी ले लो 500 फिर दिए। तो यूं 1500 रियाल का सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनका सवाल पूरा कर दिया। अच्छा, अब जिस दोस्त ने दिया इसको, ना उसको इसके फाके का पता, ना इसने कोई इशारा किया कि मुझे पैसों की जरूरत है, बस तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही नौ लगी है, किसी का एहसान जो उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है। तो फिर यूं गैब से असवा हो जाता, मगर हमारी नजर जो है ना इसकी जेब पर है, उसकी जेब पर है, इसकी जेब पर है, सबसे सबसे गुंबद कहाँ है, देखो यहाँ नहीं है। भाई आका की मोहब्बत तो दिल में है ना, अब तो इधर नजर डाले ना आदमी, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही नौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बस खुददार बन जा, खुददार है ना, बंदा भूखा रह जाए मगर इजहार ना करे कि मुझे दो, मजा आ जाए, फिर करम की जो बारिश होंगी इंशाअल्लाह। और यह नहीं कि मदीने जाएंगे तो ही सरकार सुनेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि गिरदाबे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये वो खाने की हिर्स में थोड़ा यार गौर करें, ये थाल छुपा लेना और आधा खा के आधा छोड़ देना, और एक दाना भी यकीन माने खुदा की कसम हम आखिरत में हिसाब नहीं दे सकते, एक दाने का भी नहीं दे सकते, आधे दाने का भी नहीं दे सकते। अल्लाह हमको बेहिसाब बख्श दे, तो सब बस तोबा ताइब हो जाएं, तोबा के तकाजे पूरे करके बस अब एहतियात 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 यार, जेब में हाथ डालो अपना, जाकर खरीद के खा लो यार, अल्लाह और बरकत देगा और बरकत देगा और बरकत देगा, कि रिस्क उसी के जिम्मे करम पर है, ये कोई लंगर रजिया पर रिस्क थोड़ी हमारा बंधा हुआ है, उसी के जिम्मे करम पर। हाँ, जो यहाँ काम करते हैं जैसे इस्लामी भाइयों में इंफरादी कोशिश करते हैं, खाना खिलाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, ये खादे में इन जो ड्यूटियां देते हैं, हर ऐसी जो खिदमतें कर रहे हैं, अब इस तरह के लोग खाएं ना तो अपने समझ में भी आता है, बाकी जो कुछ भी नहीं करते वो खामा का खाना ही खाना है, उनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात। स्टाफ जो होते हैं ना इजारे वाले, और इनको मेरी बातों पर प्लीज 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 नाराज हुए बगैर गौर कर लें, क्योंकि किसी के मुंह से निवाला छीनेंगे ना उसकी समझ में तो नहीं आएगा, समझे, ये समझो मैं बात जो कर रहा हूँ निवाला छीनने वाली बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, ये खुद इज्तिहाद करेगा, इसका नफ्स उसकी रहनुमाई करेगा, शैतान पीठ थाबड़ेगा कि तेरे को थोड़ी बोलते थे, ये तो उन लोगों को बोलते थे, ये तो इन लोगों को बोलते थे, तू थोड़ी ऐसा करता है, तो यूं करके और वो बिठा देगा मतलब थाल में, और थाल छुपवा भी देगा, सब कुछ कर लेगा। ये तो उसको बोलते थे कि छुप रख के भूल जाते हैं, सबको थोड़ी बोलते थे, अब अपने नहीं भूलेंगे, तो यूं करके फिर शायद हस्ब साबिक तरकीब बन जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है, अपने को छुपाना भी नहीं है, कब खाना है कब नहीं खाना और कैसे खाना ये सब एहतियात करनी है, एक दाना भी साया नहीं होना चाहिए, जितने थाल में अधूरा खाना को छोड़ भी गया उसको भी समेट के लाना है और इसका इस्तेमाल करना है।
पानी नहीं होता है तो यहाँ गुसल करना भी आसान है,
गुसल ये सब इसके लिए थोड़ी है यार, ये ना 18-20 लाख का तो खाली रमजान में पानी आता है अपना बाहर से, अंदर का पानी तो होता है ये टैंकर और जो आते हैं मंगवाने पड़ते हैं, और हमको तो रियायत से मिलते हैं, है ना, रियायत से मिलते हैं ना, के बावजूद तकरीबन माह रमजान का 18-20 लाख का पानी आता है, तकरीबन तैर रहे होते हैं पानी में, ये निवड़े होते हैं ना सारा महीना बास पड़े खूब नहाते फुहारा करके होते भूल जाते होंगे, खोल के लुत्फंदोज होते होंगे, तो जहन सबका बना हुआ नहीं होता, क्या करें रब, जब समझा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होते भी नहीं है, और समझाओ तो बस वही जहन बन जाता होगा कि हमारे लिए थोड़ी है, दूसरों को बोल रहे।
अच्छा, अब आपने फैजान मदीना में अपना वक्त गुजारना होता है, जो आपके जो जिम्मेदारियां हैं, इसके अलावा माह रमजान में फिर घर ना जाए तो कौन कौन घर ना जाए, हो सकता है नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, अपनी वो जो ड्यूटी है वो पूरी करेंगे फिर यहीं रहेंगे।
रहने से मुराद हमारी बिजलियां खर्च करना नहीं है, ये जो अपने मदनी हलके और जो भी दुआएं याद कराने के सिलसिले, नमाजें सिखाने के सिलसिले, मदनी मुजाकरे,
ड्यूटियां पूरी हो गई तो एतकाफ के जदवल में आ जाएंगे ना।
हाँ,
ड्यूटी पूरी हो गई एतकाफ के जदवल में आ जाइए।
बाबा अपनी आपके लिए बाहर जाने की इजाजत होगी,
जो जो आपकी मजलिस इजाजत दे ना वो मुस्तस्ना है, अरे अतियात करे तो जाना ही पड़ेगा, किसी को और हुक्म मिला के भाई फुला काम करके आ जाओ तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा अपने बाकी वक्त फैजान मदीना में इतिकाफ की तरकीब के मुताबिक गुजारना, खाली रहने से कोई फायदा नहीं है हमको, बल्कि उल्टा नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा कि आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। बिजली इस्तेमाल करने का इसी सूरत में जवाब होगा ना कि आप इबादत के लिए रुके हुए, एहतिकाब में रुके हुए, खाली खाली सोने के लिए रुकना ये मुराद है भी नहीं, घर ना जाए बस।
भाई कौन कौन रुकेगा जैसे बापा ने फरमाया इसके मुताबिक?
फैजान मदीना का खाएंगे और फैजान मदीना हासिल नहीं करेंगे। दुनिया कहाँ कहाँ से आ रही है, यूके से बास पहुंच गए, श्रीलंका से तो कितने आ गए माशाल्लाह, कई रोज से वो 92 दिन के लिए आए हुए, इन सब इनको पता होता होगा। लेकिन यार कुएं के पास लेकर प्यासे, कोई आया पाके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कुछ घंटे हमको दे दो, चलो चलो भाई, दोपहर का मदनी मुजाकरा पहला कतरा बारिश का।
पर ड्यूटी के अलावा एक मदनी मुजाकरे के लिए जो तैयार है वो हाथ खड़ा कर लें।
सुभान अल्लाह, ये सही थी।
मतलब आपको सहूलत दिन की है तो दिन में आ जाए, रात की सहूलत है तो रात के एक मदनी मुजाकरा।
रात दिन ये वजात ना सही, हाथ उठा लेंगे एक मदनी मुजाकरा, सारा महीना इंशाअल्लाह सुनेंगे। आपको देखो ना, उजर हो गया, मजबूरी हो गई, तो मजबूरी में ऐसी सूरत है कि जमात भी माफ हो जाती है, वो एक अलग बात है, वरना ये कि अपनी सुस्ती से नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एक मदनी मुजाकरे वाले हाथ उठाएं, सारा महीना एक मदनी मुजाकरे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहमदु व नसल्लि व नसल्लम अला रसूल नबी करीम सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हज़रत औफियानों की जानिब से पाकिस्तान भर के जामियातुल मदीना के जहाँ जहाँ दौरे हदीस शरीफ है, तो दौरे हदीस शरीफ के तलबा किराम और असातिज़ा किराम की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू खब्बाब ने हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे की कारकर्दगी से मुशर्रफ फरमाया। मरकज़ुल औलिया 126 तलबाए किराम में से 70, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ 36 में से 31, सरदाराबाद 46 में से 31, इस्लामाबाद 29 में से 22, जमनगर 31 में से 25। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबका आना शिरकत सरमाना कबूल फरमाए। पिछली बार दमदम नगर के सिर्फ 10 थे, इस बार माशाल्लाह इन्होंने जंप लिया, 25 हो गए, 31 में तो होगी, अच्छी तादाद है। लेकिन इस्लामाबाद 29 में से 22 और 31 में से 25, तो इसका मतलब 36 में से 31 मदीनतुल औलिया। फर्स्ट पिछली बार भी मदीनतुल औलिया ही था, इस बार भी सेकंड पोजीशन वाले बन जमन नगर आ गया। देखो तो कब तक रहते हैं, अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह ताला आप सबको आलिम में बामल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए और बामल मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। मदनी फूल दो देखी की दावत सफा नंबर 404। अगर मदनी माहौल वाले या वाली के मिजाज में गुस्सा चिड़चिड़ापन और बदअखलाकी हुई तो कामयाबी मुश्किल है, लिहाजा अपने अखलाक दुरुस्त कीजिए। और वैसे भी जिसे दावत इस्लामी के मदनी कामों की धुन हो उसके लिए ठंडे मिजाज का होना जरूरी है, कि बेजा सख्ती करने से बाहर काम बदते मदते बिगड़ जाते हैं। नरमी की अहमियत को हिकायत से समझने की कोशिश कीजिए। चुनाचे मनकूल है कि किसी ने मामून रशीद पर एहतसाब किया, यानी किसी खता भट्टों का, और उससे सख्ती के साथ गुफ्तगू की, तो मामून रशीद ने कहा, ए जवान मर्द, हक तआला ने
تجھ سے بہتر افراد ہو، جب مجھ سے بدتر فرد کے پاس بھیجا، مجھ سے بہتر یعنی سیدنا موسیٰ سیدنا ہارون علیہ السلام اور مجھ سے بدتر یعنی فرعون، تو ان کو حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو. پارہ 16 سورہ طہٰ آیت نمبر 44 اس نے پڑھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا، ترجمہ کمزور ایمان، تو اس سے نرم بات کہنا، ہے بنا ہو کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب یہ سن کر تو نرمی کا ذہن تو کر بنتا ہے، بہت سی روایتیں آپ نے تو پڑھی ہوتی، لیکن یہ کہ فطرت کیسے بدلے، عادتیں کیسے سدھرے. مدنی قافلوں میں اگر پابندی سے اس کے جدول کے مطابق سفر کی ترکیب رہی اور سنجیدگی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل جاری رہا، تو انشاءاللہ 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 میں وہ نرمی اور وہ شرم و حیا اور وہ تازگی اور نکھار آئے گا کہ بس آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ لوگ توبہ کر لیں گے. انشاءاللہ ہمت کیجیے اور بابر مبلغ بننے کے لیے جد و جہد جاری رکھیے. مجھے خدا اللہ کی بے صاحب مغفرت کے لیے دعا کی التجا ہے اور یہ ہدف رکھیے کہ 100% طلبا کرام اساتذہ کرام مدنی مذاکرے میں شریک رہ کریں، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ سوال جواب شروع ہونے سے لے کر، سوال جواب جب شروع ہوتے ہیں نا ابھی آپ کا گھنٹہ شروع ہو، 1 گھنٹہ 12 منٹ زیادہ اچھا شہر جتنا زیادہ میٹھا ہو پورا ہی اٹینڈ کیجیے، پورا دیکھیے. بیچ میں کبھی کبھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا میں نے، بڑی معلومات ہوتی ہے اس کا تو ہوتا تھا، اب وہ خود ہو ہی جاتا ہوگا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ججید اور وکلا کا مدنی مذاکرہ تھا تو ایک سپریم کورٹ کے میرا خیال وکیل تھا، اس نے کہا مجھے کہتے رہتے تھے، میں ٹالتا رہتا تھا، میں کھلا بات کر رہا ہوں، میں آتا نہیں، مطلب ترکیب بنتی نہیں تھی میری، پھر اب یہ میرے پیچھے لگی اور مجھے لے آئے گا باہل مدینہ. اس نے کہا کہ بس میری 46 سال کی عمر ہو گئی، 46 سال میں حالانکہ بڑے بڑوں کی ملاقاتیں ہوئی کہنے کی ان کی پتا رہتے ہیں علماء کی فلاں کی، لیکن 2 گھنٹے میں جو مجھے یہاں فضان مدینہ میں جو سیکھنے کو ملا ہے، جو مدنی مذاکرے سے ملا ہے، میری زندگی میں مجھے نہیں ملا. پھر یہ رو پڑے روئے، مارا لیے گئے اور اچھا خاصا اس کا مطلب تاثرات انہوں نے دیے تھے اپنے اس میں، اور اب بھی انہوں نے بڑی نیتیں کی ہیں اور بڑا جذبہ دکھایا ہے، اور ان کو 12-13-14 اگست کی تاریخ ان کے مطالبے پر پھر دی گئی ہے، یعنی پھر انہوں نے مانگی تاریخ، تو میں نے کہا اب کی بار آؤ نا 72 گھنٹے لے کر تیار ہو، چھٹیاں ہوتی ہیں کورٹ ہوگی، ججیز اور وکلا مزید لے آئیں گے انشاءاللہ.
ملک جواد خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راولپنڈی سے آیا ہوں. میں 46 ایئرز سے زائد اس دنیا میں اب گزار چکا ہوں. جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے حضرت صاحب کو سنا سب سے پہلے. میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ شاید میری زندگی کے وہ 2 گھنٹے جو میں نے ان کے ساتھ پہلے آپ ساروں کے ساتھ بیٹھ کر باہر گزارے تھے، میرے ان 46 سال سے زیادہ بہتر تھے. بابا جان میں اسپیشلی آپ سے استدعا کہوں گا، مجھے موقع دیں کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں کو چوم کر، میں آج تک کسی سے بیعت نہیں ہوا، بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے ولیوں کے در پہ گیا ہوں، لیکن میں آپ کے ہاتھوں آج بیعت ہونا چاہ رہا ہوں.
Thank you. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی عاشق مدنی انعامات محمد وسیم نیپال استاد جامعہ المدینہ نیپال غالباً نیپال گنج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبلغ قفل مدینہ حاجی فضیل رضا نے کارکردگی بھیجی, اس میں یہ خوشخبری بھی سنائی جس سے خوشی بھی خوشی سے جھوم اٹھے, یعنی آپ کے جامعۃ المدینہ میں مدنی انعامات کے انداز پر اب طلباء کرام زندگی گزارنے کی ترکیب کریں گے, جس کی آپ کو ذمہ داری بھی ملی ہے. کیا بات ہے مدینے کی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے مجھے ایسی خوشخبری مل جائے کہ آپ کا ہر طالب علم مدنی انعامات کے بعد سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہنسنا رونا تمام زندگی کے جو لیل و نہار ہیں وہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں. کاش ایسی خوشخبری مجھے سننے کو مل جائے, اللہ آپ کو برکت دے. ہے تھوڑا یوں کام کرنا پڑے گا, یہ خالی چاہنے سے بولنے سے اعلان کرنے سے نہیں ہو جائے گا. ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے گا اور بار بار ہزار بار سمجھانے کی ترکیب کرتے رہنے پڑے گی. ایک بار دو بار سے شاید یہ کام نہ ہو, کیونکہ وہ جہاں نفس کو لذت ملتی ہے نا وہ تو بندہ خود تلاش کر لیتا ہے وہ کام, لیکن یہاں آپ کو یہ کام کرنے والے تلاش کرنے پڑیں گے. نفس کو تو اس میں زد پڑتی ہے نا مدنی انعامات پر عمل کرنے میں. اللہ کرے گا تو آپ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے اور تکمیل جو ہوگی وہ اللہ تعالی کی جناب سے ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاس باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب بہت پیاری ہے, اللہ کرے آپ کے پاس ہو آپ نے پڑھی ہو. باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ 57, باطنی بیماری نمبر 5 حب مدح. اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ, کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں مجھے عزت دیں, حب مدح کہلاتا ہے. یہ تعریف پڑھنے سننے کے بعد تو واقعی یعنی کہ تارے نظر آ جائیں, اس سے بچنا کس نے, اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا, ورنہ یہ کہ اپنی تعریف اتنی پسند ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس سے ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنا کیا اور ہمارے استاد نے میری پیٹ بھی نہیں تھپکی, میری حوصلہ افزائی نہیں کی. حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی تعریف اور اپنے فضائل سننے کو جی چاہ رہا ہے نا, کسی آزمائش ہے. بلکہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے کہ تعریف ہو میری, اور اس کی تو سخت وعید ہے. یہ تو جو نہیں کیا اپنے اس پر تعریف چاہنا یہ تو قطعی حرام, میرے آقا اعلی حضرت نے اس کو تو فرمایا ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں, جب تو صریح حرام قطعی ہے. قال اللہ یعنی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز الایمان, ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو, ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں بس پسند فرما لے, راضی ہو جائے, ہم سے خوش ہو جائے. باقی تو ہم لوگ تو بس ایسے ہی کھوٹے سکے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. آپ طلبہ کرام ہیں, قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں آپ کے یہاں بلند ہوتی رہتی ہیں. یا اللہ, طلبہ کرام کے طفیل میری بے حساب مغفرت کر دے. اساتذہ کرام جو دین پڑھاتے ہیں ان کے طفیل مجھے بے حساب بخش دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عالم باعمل اور مفتی اسلام بنائے, ساتھ میں باعمل مبلغ دعوت اسلامی اور مدنی انعامات کا عامل بنائے, قفل مدینہ کا حامل بنائے. زبان, آنکھ اور پیٹ کا حقیقی معنوں میں قفل مدینہ نصیب ہو جائے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں. مجھے بے حساب مغفرت کی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا. تمام طلبہ کرام, اساتذہ کرام کو میرا بہت 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 سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو یہ بلندی ہے.